गुरु की अचल भक्ति ईश्वर साक्षात्कार करने के लिए बहुत असरकारक पद्धति मानी जाती है। गुरु की महिमा का सतत स्मरण और उनके दिव्य संदेश को सर्वत्र फैलाना, यह गुरु के प्रति सच्चा भक्ति भाव है। आचार्य के पवित्र चरणों की भक्ति फूल है और उनके आशीर्वाद अमर फल है। जीवन का ध्येय है परिणाम में दुख देने वाली कुसंगति का त्याग करना और अमरत्व देने वाले पवित्र आचार्य के चरण कमलों की सेवा करना। साधक जब इहलोक और परलोक में चिरंतन सुख देने वाले गुरु भक्ति योग का आश्रय लेता है, तभी उसका सच्चा जीवन शुरू होता है। जन्म मृत्यु सुख दुख हर्ष शोक के अतिरिक्त चक्र से मुक्ति नहीं होगी क्या? हे शिष्य, सावधान होकर सुन, उसके लिए एक निश्चित उपाय है। नाशवंत इंद्रिय विषयक पदार्थों में से अपना मन हटा ले और इन द्वंद्वों से पार ले जाने वाले गुरु भक्ति योग का आश्रय ले। सच्चा एवं स्थायी सुख बाहर के नाशवंत पदार्थों से नहीं, अपितु गुरु शरण योग का आश्रय लेने से मिल सकता है। गुरु सेवा योग, गुरु शरण योग आदि गुरु भक्ति योग के समानार्थी शब्द है, ये सब एक ही है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास माने गुरु के प्रति गहरा पवित्र प्रेम। आत्मा का आनंद तो गुरु परंपरा से ही मिलता है, गुरु प्रसाद से मिलता है। बुद्धिमता से यह रस प्रकट नहीं हो सकता। पूछ कर देखिए किसी वैज्ञानिक को, गुरु कृपा प्राप्त कर सत्य शिष्य को जो स्वाद आता है, वह स्वाद क्या कभी वह विज्ञान से प्राप्त कर सका है? आप बड़े से बड़े वैज्ञानिक को खोज लाइए अथवा बड़े से बड़े दार्शनिक को ले आइए और उनसे पूछिए कि सद्गुरु का कोई सत्य शिष्य जो लुप्त उठाता है, उस मजे की जानकारी भी क्या आपको है? सत्य शिष्य जो आनंद लूटता है, चरम सीमा पर पहुंचा हुआ वैज्ञानिक भी उस आनंद से परिचित नहीं है। विज्ञान के सभी साधन एकत्रित करके भी जो जो सुख व्यक्ति ले सकता है, वे गुरु कृपा से प्राप्त सुख के आगे नितांत तुच्छ है। शिष्य के हृदय में जो सुख छा जाता है, वह त्रैलोक्य के साम्राज्य से भी मिलना सुलभ नहीं। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है, तीन टुक कोपनी की भाजी बिना लून, तुलसी हृदय रघुवीर बसे तो इंद्र बापड़ो कून। इंद्र का सुख क्या है? अप्सराओं के नाच गान में क्या सुख है? अरे देवताओं पर भी आदेश चलाने का सुख क्या है? जहाँ एक बार भीतर का सुख आया कि ये समस्त सुख फीके पड़ जाते हैं। देवताओं पर हुक्म चलाकर बहिर्मुख हो जाओगे। देवता यदि आदेश ना माने तो द्वेष होगा। आत्मा के आनंद में तो राग द्वेष के लिए स्थान ही नहीं। वहाँ तो ना कोई देवता है और ना ही कोई आज्ञा देने वाला। वहाँ तो परम देव के साथ एक रूप हो रहे हैं। द्वैत के पर्दे फट रहे हैं और अद्वैत का आविर्भाव हो रहा है। संसार में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी आदि संबंधों की तरह गुरु शिष्य का संबंध भी एक संबंध ही है, परंतु दूसरे सारे संबंध जीव के बंधन बढ़ाने वाले हैं, जबकि गुरु शिष्य का संबंध सब बंधनों से मुक्त कराता है। इसीलिए संसार में यदि कोई सार्थक संबंध है तो वह है गुरु शिष्य का संबंध। यही एकमात्र ऐसा संबंध है जो दूसरे सब बंधनों से मुक्ति दिलाकर अंत में स्वयं भी हट जाता है। जीव को स्वयं शिव स्वरूप का अनुभव कराकर मुक्त करा देता है। ऐसी परम मुक्तावस्था के बारे में कहा गया है, इस अवस्था में पिता पिता नहीं रहता, माता माता नहीं रहती, लोक लोक नहीं रहते, देव देव नहीं रहते, वेद वेद नहीं रहते। इस स्थिति में चोर चोर नहीं रहता, भ्रूण हत्यारा नहीं रहता, चांडाल चांडाल नहीं रहता, सन्यासी सन्यासी नहीं रहता, तपस्वी तपस्वी नहीं रहता। इस स्थिति में उसे तो पुण्य लगता है ना ही पाप लगता है, क्योंकि वह सब शोकों से पार चला जाता है। ऐसे अद्भुत पद पर आरूढ़ होने के लिए सद्गुरु के सानिध्य की परम आवश्यकता है। सद्गुरु अर्थात कौन? जिनके सानिध्य मात्र से, जिनके दर्शन मात्र से तुम्हें अपने भूले हुए शिव स्वरूप की याद आ जाए, जिनकी आँखों में तुम्हें अपने स्वयं की आँखों की आभा नजर आ जाए, जिनकी वाणी में तुम्हें अपने अंतरतम का मधुर संगीत गूंजता सुनाई पड़ जाए, जिनकी उपस्थिति से तुम्हारा जीवत्व पिघलने लगे और भीतर सोई हुई विराट संभावनाएं करवटें लेने लगे, तथा जिनकी शरण में जाकर तुम अपना अहंकार विसर्जित करके करने को तैयार हो जाओ, ऐसे सद्गुरु तुम्हारे भीतर साहस भरते हैं, तुम्हारा आत्मविश्वास जगाते हैं, तुम्हें मार्ग बताते हैं जिस पर चलने को तुम सक्षम हो जाओ, अंतर्मुख होकर अनंत की यात्रा पर चल पड़ो और अंत में शाश्वत शांति तथा परम निर्भयता के मालिक बन जाओ। गुरु के सानिध्य से शिष्य के चित्त में मौलिक परिवर्तन होने लगता है। गुरु के चित्त में अपार शक्ति होती है, क्योंकि उनका चित्त सूक्ष्मता और व्यापकता की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ होता है, जबकि शिष्य का चित्त अभी भौतिकता के पास में फंसा हुआ होता है। शिष्य अभी अपने भीतर जिस ईश्वरत्व को नहीं देख सकता, उस ईश्वरत्व को गुरु की पारदर्शी दृष्टि देख लेती है। शिष्य को उसके ईश्वरत्व में जगाने में गुरु सहायता करते हैं। संप्रेक्षण शक्ति की वर्षा करके शिष्य के रोम रोम को प्रफुल्लित कर देते हैं। मानव जाति का यह सौभाग्य है कि आज विश्व भर के वैज्ञानिक आध्यात्मिक रहस्यों की खोज करने में दिलचस्पी लेने लगे हैं। अनेक प्रकार के प्रयोग करके अध्यात्म शास्त्र को वैज्ञानिक ढंग से जांचने और समझने के लिए प्रयत्नशील हैं। मनुष्य की उपस्थिति का प्रभाव, उसके संकल्पों और कृत्य का प्रभाव वनस्पति पर कैसा होता है, यह जानने के लिए अनेक प्रयोग हुए हैं। एक कमरे में चार पौधों को चार गमलों सहित रखकर बारी बारी से चार व्यक्तियों को उसके पास गुजारा गया। चार में से एक व्यक्ति ने पूर्व के संकेत के अनुसार एक पौधे को कुचल कर नष्ट कर दिया। बाकी के तीन पौधों पर अति संवेदनशील यंत्र लगा दिए गए थे जो उनके सूक्ष्म संवेदनों को पकड़ते थे। अब हर व्यक्ति को बारी बारी से उन पौधों के पास फिर से भेजा गया। तीन व्यक्तियों के पास में से गुजरते समय पौधों पर कुछ भी प्रभाव नज़र नहीं आया, परंतु जब पौधे को कुचलने वाले उस चौथे व्यक्ति को भेजा गया तो वे पौधे घबरा इस घबराहट के संवेदनों को यंत्रों ने सुई द्वारा स्पष्ट रूप से बताया। दूसरे एक प्रयोग में एक बगीचे के माली को दूसरे गांव भेजा गया। बगीचे के पौधों पर लगे यंत्रों ने पौधों के भीतर बढ़ते हुए विषादपूर्ण कंपनों को दर्शाया, जैसे माली के दूर जाने से पौधों को बड़ा दुख हुआ हो। फिर जिस दिन माली ने बगीचे के पास आना आरंभ किया, उसी समय ये यंत्रों ने पौधों के भीतर फैलते हुए हर्ष उल्लास के आंदोलनों को दर्शाना शुरू कर दिया। चैतन्य की सुषुप्त अवस्था में रहती हुई वनस्पति पर अशिक्षित माली की चेष्टाओं का प्रभाव पड़ता है, तो परम सूक्ष्म अवस्थाओं में विचरण करते हुए सद्गुरु की अमृतमय दृष्टि से शिष्य के अंदर सोई हुई चैतन्य की चिंगारी सुलग कर विशाल प्रकाश पुंज बन जाए तो उसमें क्या आश्चर्य है।